शांति। ड्रामा का पाठ सभी को पक्का है और पहले ही दिन बताया था कि क्यों हम पहले से ही सारा प्रोग्राम नहीं बताते हैं। ब्राह्मणों के प्रोग्राम पल पल परिवर्तित होते हैं और उसी परिवर्तन के अनुसार आज हमारे बीच में है आदरणीय राजयोगी भ्राता छोटेलाल भाई जी। हम एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत सत्कार और अभिनंदन करते हैं। आप हमारे मधुबन निवासी भाई जो सिक्योरिटी की सेवा में रहते हैं, हमेशा आंगन में सभी से भेंट होती रहती है और जो साल भर यहाँ रात्रि क्लास होता है वो भी ऑर्गेनाइज आप ही करते हैं। वैसे तो आपने ज्ञान हरियाणा से लिया है लेकिन लौकिक जन्म राजस्थान के अलवर जिले के पास दारोदा नाम के गांव से हुआ है और वहीं पर घर है, घर पे गीता पाठशाला है। घर के अनेक सदस्य या कुमारियां कहें बाबा के घर में समर्पित हैं। आप पिछले 44 वर्षों से ज्ञान में हैं और 39 वर्षों से बाबा के घर मधुबन में बेहद की सेवाएं दे रहे हैं। पूरे भारत भर में भ्रमण करते हैं भट्टियां कराने के लिए और साथ साथ जो हमारे पड़ोसी देश है जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस, दुबई आदि आदि स्थानों पर भी जाकर अपने भट्टियां कराई है। तो आज हमारे बीच में है बहुत सुंदर विषय, समय की पुकार क्या है। तो सुनते हैं भ्राता जी से, आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। हम सभी को प्यारा बाबा समय को देखते हुए समय प्रति समय भिन्न भिन्न इशारे देते रहते हैं। तो जैसा कि अभी सुना, समय की पुकार क्या है, इसके अनेक उत्तर हैं। तीव्र पुरुषार्थी बनना है, संपूर्ण पावन बनना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आज की मुरली में था, हम सभी को अभी वापस घर जाना है, इसलिए शरीरी भी बनना है। तो समय बहुत ही तीव्र गति से जा रहा है और यदि समय पर हमको संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है तो अपने पुरुषार्थ की गति को भी तीव्र बनाकर रखना पड़ेगा, तभी समय पर मंजिल पर पहुंच सकेंगे, अन्यथा समय की दौड़ में पीछे रह सकते हैं। तो आज हम सब इस एक पॉइंट को कि कैसे हमारा पुरुषार्थ समय के साथ साथ तीव्र गति का बना रहे ताकि हम समय पर मंजिल पर पहुंच सकें, इस बारे में कुछ अनुभव के साथ विचार सुनाएंगे। हम सभी पुरुषार्थ तो कर रहे हैं लेकिन जो आज की मुरली में बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ की स्थिति किसको कहेंगे? साक्षीपन की स्थिति। साक्षी अर्थात, और क्यों जरूरी है ये? क्योंकि वर्तमान में वीर आगे आने वाले समय को देखते हुए ऐसी बहुत सारी बातें, घटनाएं, परिस्थिति हम सबको देखने, अनुभव करने को मिलेंगी जो कभी सुना नहीं हो या देखी नहीं हो, और उनके प्रभाव में हम आ सकते हैं। इसलिए बाबा पहले से इशारा दे रहे हैं कि उन सभी के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए ये साक्षीपन की स्थिति का अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है। क्या है साक्षीपन की स्थिति? सब कुछ देखते, सुनते, कर्म करते, उसके प्रभाव से मुक्त रहना, यही है साक्षीपन की स्थिति। तो हम सभी को बाबा ने ये पाठ पक्का करा दिया है कि इस ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जो भी कुछ हो रहा है वही निश्चित है, वही होना है, उसी में कल्याण समाया हुआ है, और वैसे ही आत्माओं के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। इसलिए कुछ भी देखते सुनते कभी भी कोई प्रश्न नहीं उठे, कैसा क्यों हो रहा है, ये तो ठीक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ज्ञान तो सबको है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात सुनते देखते हैं तो कईयों का संकल्प तो चलता है ना, है? क्यों? उसका कारण कि आज जो भी कुछ हो रहा है वो बाबा भी तो ऊपर बैठा देख रहा है ना, लेकिन उसका कोई देखते हुए कोई संकल्प नहीं चलता, हलचल नहीं होती, तो हमारा आपका क्यों चलता है फिर? उसका कारण है कि वो त्रिकालदर्शी बनकर देख रहा है और हम केवल वर्तमान की रीति से एक कालदर्शी बन के देख रहे हैं, इसलिए वहां हलचल पैदा हो रही है, संकल्प चलते हैं। बाबा के सुंदर महावाक्य हैं कि बच्चे जैसे मैं इस ड्रामा को साक्षी होकर देखता हूं वैसे तुम भी देखो तो बाप समान बन जाएंगे। तो इसलिए इसका अभ्यास बहुत जरूरी है, तभी हम हलचल के सभी प्रकार के हलचलों के प्रभाव से मुक्त रह सकेंगे। और तीव्र पुरुषार्थ सहज कर सकेंगे और तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए हम पहले इस बात के कारणों को जान लें कि कौन सी बातें हमारे पुरुषार्थ में रुकावट का कारण बनती है। यदि उन कारणों का हम निवारण कर दें तो निश्चित रूप से हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा। अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने इस संबंध में जो कुछ इशारे दिए वो बातें बहुत हैं, लेकिन तीन मुख्य बातें बताई हैं जो तीव्र पुरुषार्थ में रुकावट का कारण बनती हैं। पहला है एक दूसरे को देखना और हद की प्राप्तियों में एक दूसरे की कापी करना। एक दूसरे को देखना और हद की प्राप्तियों में एक दूसरे की कापी करना। वो ऐसे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसे क्यों करते हैं। जहां पर हम, और ज्यादातर व्यक्ति की नेचर है वो अपनी कमी कमजोरियों की तरफ ध्यान कम जाता है, दूसरों की जल्दी नजर आती है। तो इसके लिए यदि हमें अभी भी आप सबसे पूछा जाए भाई सभी मैं मेरे पन से मुक्त हुए हैं, ये अभी भी रहा हुआ है, मैं पूछता नहीं हूं, हर एक अपने आप को चेक कर लेना। बाबा ने ये पूछा तो बाबा ने एक संदेश में, अव्यक्त बाप दादा ने संदेश में ये बात बताई कि बाबा बच्चों का चार्ट देख रहे थे। तो चार्ट में बाबा ने क्या देखा कि बच्चे मोटे रूप के मैं मेरे पन से तो मुक्त हुए हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप का अभी भी रहा हुआ है। तो उसका पता कैसे चलेगा? उसकी चेकिंग के लिए बाबा ने एक तीन बातों का यंत्र दिया। अब आप सभी सुनते भी जाना, हर एक अपने आप को चेक कर लेना। बाबा ने कहा कि देह भान से न्यारे होकर, दूसरा कहा साक्षी दृष्टा बनकर, तीसरा बताया संपूर्ण नॉलेज की स्टेज के आधार से चेक करो। अब ये तीन बातों का यंत्र दिया और चेकिंग क्या करनी है इस आधार से कि यदि अचानक आर्डर मिले छोड़ो तो सब कुछ छूट जाए। बावन का इसमें एवर रेडी हैं, हर एक अपने आप से पूछ ले। अभी यहां बैठे बैठे एग्जाम्पल के तौर पर, आज नहीं तो कल होना तो है ऐसा भी मान लो, अभी यहां बैठे बैठे बाबा की तरफ से इशारा मिले कि बच्चे सब कुछ छोड़ के एक सेकेंड में उड़ के बाबा के पास पहुंच जाओ, तो क्या हम एक सेकेंड में उड़ के बाबा के पास पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं या टाइम लगेगा? हर एक पूछ ले अपने आप को। अगर पहुंच सकते हैं तो समझो कि मैं मेरे पन से मुक्त हुए हैं, और यदि नहीं तो उस समय उसी में बुद्धि जाएगी जिसमें कि मेरापन होगा। बच्चों का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, और बुद्धि उधर गई तो पेपर तो एक सेकंड का ही होना है तो फेल। तो इसीलिए मैं मेरे पन से मुक्त होना बहुत जरूरी है। आज हम में से जिनके जीवन में भी जो भी प्रोग्रेस हुई है, गुण विशेषता महानता आई है, वो वास्तव में उस प्यारे बाबा दाता की देन है। इसलिए उसको पाकर कभी भी अभिमान नहीं आए कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मेरे अंदर गुण विशेषता है, मुझे आगे रखा जाए। नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे, सब कार्य ऊपर से ही हो रहे हैं, हम आप सभी सिर्फ निमित्त बन के पार्ट बजा रहे हैं। इस धारणा को अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलो तो देखो निरंतर तीव्र गति का पुरुषार्थ बना रहेगा। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए विचारों का महान होना बहुत जरूरी है। हमारे मन में जो भी संकल्प विचार चल रहे हैं, चेक करो वो कितने श्रेष्ठ हैं, महान हैं, पॉजिटिव हैं, पावरफुल हैं, उतना ही आपकी स्थिति श्रेष्ठ और महान बनती जाएगी। विचार महान कैसे बनेंगे? विचार महान बनेंगे ज्ञान के मनन चिंतन से, स्वमान के अभ्यास से विचार महान बनेंगे। और जहां विचार महान है तो उन्हें सहज ही कंट्रोल कर सकेंगे, और जहां कंट्रोलिंग पावर है तो बीती बातों को बिंदी लगाना, फुल स्टॉप लगाना सहज और सरल हो जाएगा। क्योंकि ये भी तीव्र पुरुषार्थ के लिए बहुत जरूरी है। बहुत भाई बहनों का बहुत सारा समय बीती बातों के चिंतन में चला जाता है, उन्होंने ऐसा किया, वो ऐसे नहीं करते, क्या होगा, कैसे होगा, 10-15-20 साल पुरानी बातें भी याद कर दुखी परेशान होते रहते। तो कैसे मुक्त होंगे बीती बातों के चिंतन से? उसके लिए हम अपने विचारों को महान बनाएं, विचार महान बनेंगे ज्ञान के मनन चिंतन से, सुमान के अभ्यास से। तो जहां विचार महान है तो उन्हें आप सहज कंट्रोल कर सकेंगे, जहां कंट्रोलिंग पावर है तो बीती बातों को बिंदी फुल स्टॉप लगाना सहज और सरल हो जाएगा, और पुरुषार्थ तीव्र गति का बना रहे। स्वमान कैसे? स्वमान के जब किसी भी स्वमान के विचारों का हम स्वरूप बनकर चलते हैं, रहते हैं, तो उससे हमारे विचार तो महान बनते ही हैं, लेकिन स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन से स्वयं को सम्मान मिलता है, दूसरों से भी सम्मान मिलता है और बाबा से भी सम्मान मिलता है। और स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कैसे भी अभिमानी आत्मा के अपमान को भी खत्म किया जा सकता है। इतनी बड़ी शक्तियां हैं बाबा द्वारा दिए हुए स्वमानों में। आजकल बहुत ऐसे हो रहा है, कोई किसी से पैसे ले लेते हैं, देते नहीं है, और फिर दुखी परेशान होते रहता है व्यक्ति, वहां पुरुषार्थ के बजाय और ही उसी बातों का चिंतन चलता रहता है, सारे दिन उनकी बातों के हलचल के प्रभाव में आ जाते हैं, पुरुषार्थ भी नहीं हो पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? एक प्रैक्टिकल का अनुभव, एक भाई का फोन आया, कहने लगा, भाई जी मैं 25 साल से ज्ञान में चल रहा हूं, मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। समस्या यह है कि मैंने एक जमीन के प्लाट के लिए सौदा किया था 20 लाख रुपए में, बातचीत होगी, सौदा फाइनल हो गया, कहा फलानी डेट को आना, पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा देंगे। तो मैंने पैसे दे दिए और पैसे लेकर वो व्यक्ति बदल गया कि आपको ये प्लाट नहीं, हम ये प्लाट देंगे। एक जैसे बराबर के साथ साथ दो प्लाट थे, बात हुई थी एक नंबर की, वो देना चाहता है दो नंबर। तो बोल नहीं, मेरे को तो एक नंबर प्लाट ही चाहिए। बोले एक नंबर नहीं मिलेगा, दो नंबर देंगे। तो बोल ठीक है, आपको नहीं देना तो मेरे पैसे वापस कर दो, कल ले जाना। कल गया 5 दिन बाद, 5 दिन बाद गया 15 दिन बाद, 15 दिन बाद गया महीना बाद, ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए, उसके पैसे भी नहीं दे रहा, प्लाट भी नहीं दे रहा। तो उसका बड़ा हलचल हो गई उसके मन में, वही संकल्प विकल्प चले, बाबा से बुद्धि योग नहीं लगे हैं। तो पूछा उसने कि मेरे सामने ऐसी स्थिति में क्या करूं? तो हमने उसे बताया कि आप एक प्रयोग करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं जिसने मेरे पैसे लिए। ऐसे रोजाना 1 घंटा 21 दिन योग करो, और जब योग करें तभी भी ये संकल्प करना कि ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए। इनका ये संकल्प जरूर करना तो आपका योग उस दिशा में काम करेगा। तो बोल ठीक है। उसने ऐसे ही प्रयोग करना शुरू किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं जिसने मेरे पैसे लिए हैं, और ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए। ऐसे वो योग करता गया करता गया, 21 दिन का बताया हमने, 10 दिन उसने योग किया। 10 दिन के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है चल के और 20 लाख रुपए देकर चला जाता है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है बाबा द्वारा दिए हुए समान। इसलिए अमृत वेले आंख खुलते ही कोई न कोई एक समान इमर्ज कर लें, और उसका मनन चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करें। ऐसा सुमान जिसकी स्मृति में आते ही नशा चढ़े, शक्ति की अनुभूति हो और सारे दिन में मन को काम दे दे, उसी सुमान का अभ्यास कर चले तो विचार महान बनेंगे और पुरुषार्थ भी तीव्र गति का होता रहेगा। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम तीन अभ्यास सारे दिन की दिनचर्या में रोजाना करके चलें, अभी से ही शुरू कर दें। जिनको पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ना है, अपने योग के चार्ट को बढ़ाना है, पवित्रता में संपूर्ण बनना है, तो ये तीन अभ्यास, सहज निरंतर योगी बनना है तो ये तीन अभ्यास रोजाना की दिनचर्या में करके चलें। पहला अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है, जो भी सामने आए, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, यही 50 से ज्यादा लोग बैठे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी आंखें जो कुछ देख रही हैं, मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनी, वैसे विचार बनेंगे और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाएगी। तो मूलाधार हुआ दृष्टि। यदि हम दृष्टि को आत्मिक बना लें, रूहानी बना लें, दिव्य बना लें, तो फिर आपको संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगेगी। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 5, 10, 15 मिनट के बाद, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बिंदु बन जाओ, निराकारी बन जाओ, अशरीरी बन जाओ। ज्यादातर भाई बहनों के पुरुषार्थ में और भी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले ये दो बातें विघ्न रूप बनकर भगवान से बुद्धि योग तोड़ने का कारण बनती हैं। पहला देह का भान, दूसरा देह का अभिमान। देखो, बाबा को याद करने के लिए तो हमें अटेंशन देना पड़ता है, आत्मभिमान ही बनना पड़ेगा, और देह भान माने के लिए पता ही नहीं चलता कब देह भान मार जाते, सहज भगवान से बुद्धि योग टूट जाता। तो इसलिए इसके भान से मुक्त होना बहुत बहुत जरूरी है, और देह भान और देह अभिमान को खत्म करने के लिए अशरीरी बनने की प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है। जो आज की मुरली में बावन का, कल भी मुरली में थी ये बात। तो बार बार हम सारे दिन में 50 बार अशरीरी बनने, निराकारी बनने का, विदेही बनने का अभ्यास करें। और योग में भी जब सारे दिन में आपने वो अभ्यास किया, योग में क्या करना है, अशरीरी बनना है, तो जैसे योग करने बैठेंगे बहुत ही जल्दी शरीर बन जाएंगे, मन बुद्धि की एकाग्रता हो जाएगी, एक पावरफुल योग का अनुभव करेंगे। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता हूं, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। फरिश्ता अर्थात जिसका इस देह और देह की दुनिया से कोई रिश्ता ना हो बुद्धि से, और फरिश्ता था संपूर्ण पवित्र आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा, सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख के चलने वाली आत्मा। तो ऐसे हम हमारे संगमयोगी पुरुषार्थी जीवन की संपूर्ण स्थिति का प्रतीक है फरिश्ता स्थिति। तो जो हमें बनना है अंत में, उस स्वरूप को हम अपने सामने बार बार लाएंगे, ये मेरी मंजिल है, मुझे ऐसा बनना है, तो गुण विशेषताएं महानताएं हमारे जीवन में आती चली जाएंगी। तो इस तरह से ये तीनों अभ्यास आप सारे दिन की दिनचर्या में बार बार करके चलो, उसके बाद आप अनुभव करेंगे आपको वहां योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लगा रहेगा। और जब भी योग करने बैठेंगे सहज ही मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, एक पावरफुल स्थिति का अनुभव करेंगे, करके देखिए, और पुरुषार्थ तीव्र गति का बना रहे। और दूसरी बात, बीच में मुझे ये तीन अभ्यास याद आ गए इसलिए बताया, तीन कारण हमने बताए थे जो भगवान से तीव्र पुरुषार्थ में रुकावट का कारण बनते। एक तो पहला बताया मैं और मेरेपन से मुक्त बने, दूसरा बताया कि हद की इच्छाएं, हद की इच्छाएं, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, अधिक धन कमा लें तो ज्यादा बाबा की यज्ञ सेवा करेंगे, ये मेरा संकल्प पूरा हो जाए तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा होगा, मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं अच्छा पुरुषार्थ करूंगी, है फलाना काम पूरा हो तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा होगा, फलाना मुझे सहयोग दे तो मैं अच्छा प्रसाद करूं, ये क्या हो गई हद की इच्छाएं। ऐसा हो तो हम ऐसा करें, कभी हो भी जाता है कभी नहीं भी होता है, हो गए तो खुश, नहीं हुए तो परेशान। तो हम जो कुछ चाहें वैसा ही तो सब कुछ नहीं हो जाता है। इसलिए इच्छा रखो लेकिन बावन का हद की नहीं, बेहद की इच्छा रखो। ये भी बावन ने कहा कि इच्छाएं कभी अच्छा नहीं बनने देंगी, इसलिए बेहद की इच्छा रखो। क्या मुझे बाप समान निरंतर योगी फरिश्ता बनना ही है, अगर तुम ये मेरी एक इच्छा पूरी करो बाबा ने कहा तो मैं तुम्हारी सब इच्छाएं स्वतः ही पूरी कर दूंगा। तीसरा कारण जो तीव्र पुरुषार्थ में रुकावट का बनता है वो है एक दूसरे को देखना और हद की प्राप्तियों में एक दूसरे की कॉपी करना। एक दूसरे को देखना और हद की प्राप्तियों में एक दूसरे की कॉपी करना, वो भाई जी ऐसे वो माता जी ऐसे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोग बतलाते रहते हैं ना, कहते रहते हैं क्यों। हम हर एक अपने आप से पूछें कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए मैं बाबा का बना या बनी। ये देखने के तो लिए हम नहीं बने थे कौन क्या कर रहा है, किसके अंदर क्या कमी कमजोरी है। जिनको पुरुषार्थ में आगे जाना है वो कभी एक दूसरे को ना देखें, अपने आप और बाबा को ही देख कर चलें। ऐसी आत्मा निरंतर पुरुषार्थ में आगे बढ़ती रहे। क्यों? क्योंकि देखो ये तो राजधानी स्थापन हो रही है तो सबका पुरुषार्थ तो एक जैसा वैसे भी नहीं होना है, नंबर वार ही होना है। तो मैं मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे किस नंबर में आना है, उस लक्ष्य को सामने रखो, बाकी सबसे अपने आप को मुक्त कर दो। और हद की प्राप्तियों में एक दूसरे की कॉपी करना, जिनको पुरुषार्थ में आगे जाना है वो कभी भी हद की प्राप्तियों में एक दूसरे की कॉपी ना करें। उनके पास ये साधन सुविधाएं, उनके पास वो इतना धन कमा लिया उन्होंने, मैं पीछे ही रह गया, वो मेरे से बाद में ज्ञान में आगे निकल गए हैं। तो कभी ऐसी हद की प्राप्तियों में अपनी तुलना ना करें। देखो आज जिसको भी जो प्राप्तियां हुई हैं, श्रेष्ठ भाग्य मिला है, वो उसके कर्मों के अनुसार, उसके पुरुषार्थ का फल है। मेरा अपना पार्ट है, मेरा अपना पुरुषार्थ है, तो जो कुछ मुझे प्राप्त है उसमें रहते हुए मैं अपना पुरुषार्थ को अच्छा बनाऊं तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा रहेगा। इसलिए कभी भी तुलना करनी है तो अच्छाइयों में कीजिए, गुण विशेषताओं में कीजिए, महानताओं में कीजिए, जिनका पुरुषार्थ तीव्र है उनसे कीजिए तो आपका पुरुषार्थ तीव्र होगा। तो इन तीन कारणों का निवारण करें और कुछ एक ऐसी बातें उनको हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें तो निरंतर हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का बना रहेगा। दो बातें तो मैंने बताई, एक तो सुमन का अभ्यास, दूसरा तीन अभ्यास। तीसरी बात, तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम अपनी दृढ़ता को कभी भी कम नहीं होने दें। जो कुछ हमें बनना है उस संकल्प को, जो भी हमने जीवन में लक्ष्य रखा है उसको अमृत वेले उठते ही कम से कम 5 बार अपने अंतर्मन में भर दो कि मुझे ऐसा बनना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। निरंतर योगी, फरिश्ता, बाप समान, जो भी आप चाहते बनना, तो उस समय हमारा अंतर्मन शांत और खाली होता है तो उन विचारों को सहज ही स्वीकार कर लेगा और फिर वैसा बनना करना हमारे लिए सहज और सरल हो जाएगा। तो हम अपनी दृढ़ता को कभी कम नहीं होने दें। अमृत वेले जब भर देंगे वो संकल्प तो सारे दिन में वो फिर वैसा ही उसी अनुसार हमारा मन बुद्धि काम करेगा। दृढ़ता कम होती क्यों है? बाबा की मुरली सुनी, बाबा ने कोई हमारे से कई बातों की, बाबा मुरली में दृढ़ प्रतिज्ञा भी कराते हैं। आप सब में से जो पुराने होंगे जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनी है सन्मुख, तो उन्होंने देखा होगा कई बार बाबा मुरली चलाते चलाते बीच में हम सब से कई बार दृढ़ प्रतिज्ञा कराते थे और बाबा कहते थे कि हाथ उठाओ। भगवान के आगे हम सब ने दो दो हाथ उठाए, फिर बाबा कहता था इनका वीडियो निकालो, फोटो निकालो। पता होगा आप में से जो पुराने हैं, तो हमने भगवान के आगे कितनी बार प्रतिज्ञा की होगी? बहुत बार की होगी ना, लेकिन वो प्रतिज्ञा को कितना हम प्रैक्टिकल कर पाए वो आप हम सब जानते हैं। कई कर भी पाते हैं, कई नहीं भी कर पाते हैं। कारण क्यों? हमारी दृढ़ता साधारणता में बदल जाती है। क्यों हम भगवान के आगे दृढ़ प्रतिज्ञा करने के बाद भी वैसा प्रैक्टिकल नहीं कर पाते? उसके बाबा ने 4 कारण बताए उन चार बातों में जब बुद्धि जाती है तो उनके कारण आत्मा का बहुत सारा समय और शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, वेस्ट चली जाती हैं, स्थिति साधारण हो जाती है। पहला बताया पर चिंतन, दूसरा पर दर्शन, तीसरा पर मत और चौथा पर संग। इन चारों शब्द में पर शब्द आता है, तो इन चारों परों को बाबा ने कहा कट कर दो और एक पर लगा के रखो। कौन सा है? पर उपकारी बनो तो निरंतर उड़ते रहेंगे और पुरुषार्थ तीव्र गति का बना रहे। इस पर एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई बाबा का बच्चा एयरपोर्ट पे सर्विस करता था। ये बात उस समय की है जब अपना पीस ऑफ माइंड चैनल नहीं चला था, तो सभी बाबा के घर सेंटरों पर ही आकर मुरली सुनते थे और वहीं बाबा को देखते थे। तो उस दिन बाबा को आना था, तो उस भाई ने अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी कि भाई मुझे घर पे जरूरी काम है इसलिए छुट्टी चाहिए। तो लेकिन एयरपोर्ट चालू होने के कारण उसको छुट्टी नहीं मिली, लेकिन उसकी दृढ़ता फिर भी कम नहीं हो रही थी। वो बाबा को दिल से याद कर यही कह रहा, बाबा कुछ भी करो लेकिन आज आपकी मुरली सुनने के लिए मुझे सेंटर पर जाना ही है। तो देखो कैसे उसकी दृढ़ता सफलता का आधार बनती है। तो उसका एक ही कारण है कैसे उसको छुट्टी मिल सकती है कि एयरपोर्ट मौसम खराब हो जाए, प्लेनों का उड़ना बंद हो जाए, एयरपोर्ट बंद हो तो उसको छुट्टी मिल सकती है। अब ये काम तो इतना सहज नहीं है, लेकिन उसकी दृढ़ता फिर भी कम नहीं हो रही थी। बार बार बाबा को दिल से याद कर यही कह रहा, बाबा कुछ भी करो लेकिन मुझे आज आपकी मुरली सुनने के लिए सेंटर पर जाना ही है। तो जैसे जैसे शाम होने को आती है तो शाम के 5 बजे के करीब वो देखता है तो मौसम धीरे धीरे खराब होने लगता है, और मौसम पूरी तरह खराब हो जाता है, प्लेनों का उड़ना बंद होता है, एयरपोर्ट बंद होता है और उसको छुट्टी मिल जाती है। तो सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है दृढ़ता के अंदर। यदि हम ये निश्चय कर लें कि मुझे बाप समान निरंतर योगी फरिश्ता बनना ही है, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको वैसा बनने करने से रोक नहीं सकती है, और फिर हम जो चाहेंगे वैसा बनना करना हमारे लिए सहज और सरल हो जाएगा। और तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए हम सदैव भगवान को साथी बनाकर चले। कहीं भी जाएं आएं 2 मिनट बाबा को याद कर कहो, बाबा मैं फलानी जगह पर जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलो और ये सेवा कराओ। तो आप वह अनुभव करेंगे जैसे कि कोई व्यक्ति किसी का साथी बनकर साथ निभाता है, ऐसे भगवान हमारा साथी बनकर साथ निभाता है। और जहां सर्वशक्तिवान साथी बन के साथ दे रहा हो तो वहां कदम कदम पर सहज सफलता अनुभव करते रहेंगे। प्रैक्टिकल का अनुभव, आपको कोई ऐसी सेवा दे दे बहन जी जो आपने कभी की नहीं हो तो सोचेंगे ना ये सेवा मैं कैसे करूंगी या करूंगा है? लेकिन आपने बाबा की सेवा समझकर हां कर लिया तो बाबा आपसे वो सेवा करवा लेगा। क्योंकि ध्यान रहे ये साधारण बहने नहीं, ये पवित्रता की देवियां, भगवान के राइट हैंड है, इनके द्वारा बाबा अपना कार्य करवा रहा है। इसलिए वो एक बाबा की श्रीमत हो जाती है, तो कभी भी बाबा की सेवा में ना नहीं करनी है, सदैव हां जी का पाठ का करके चलना है। क्यों? कराने वाला तो वो है, आप हम सबको तो सिर्फ निमित्त ही बनना है। तो जहां हम हां जी का पाठ पक्का करके चलते हैं तो कैसे वहां बाबा की एक शक्ति दुआओं के रूप में हमारा साथी बनकर साथ निभाती है, असंभव कार्य संभव हो जाते हैं और पुरुषार्थ तीव्र गति का बना रहता है। तो एक अनुभव, हम नए नए मधुबन निवासी बने थे, जैसा कि सुना ना मुझे यहां रहते 39 ईयर्स हो गए मधुबन में, तो 1 साल ही हुआ था उस समय। तो उस समय हमारे को कुछ क्लास कराने का, भाषण करने का जरा भी अभ्यास नहीं था। तो उस समय तो जो था मधुबनी था, शांतिवन ज्ञान सरोवर कुछ नहीं बना था, सभी दादियां यहां रहती थी, यहीं बाबा आते थे। तो मनोहर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया कि जिन भाई बहनों पर क्लास कराना नहीं आता है, भाषण करना नहीं आता, उनके अंदर वो कला आए। तो मेरे को भी कहा कि आपको भाषण करना है। अब हमने चुपचाप सुन लिया, ना हाँ किया ना किया, क्यों? कभी भाषण किया ही नहीं तो कैसे हाँ करें। और दादी ने कहा तो ना भी कैसे करें। तो मैं बाबा के कमरे में गया और मैंने बाबा को याद कर कहा कि बाबा मेरे को तो भाषण करना आता नहीं है, दादी ने बोला है कि मेरे को भाषण करना है, तो मैं कैसे भाषण करूंगा। तो बाबा की तरफ से टचिंग मिली, बच्चे बाबा ने तुमको वरदान दिया है, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तो बस ये पॉइंट स्मृति में आते ही थोड़ा शक्ति आ गई। मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, इसका मतलब हमने कल पहले भी भाषण किया है, सफलता पाई है, और फिर से वही करना तो कौन सी बड़ी बात है। तो ये विचार आते ही थोड़ा शक्ति आ गई, और ये भी बाबा को याद कर बोल दिया कि यदि बाबा कुछ नहीं आए तो आप ही आना और आप ही भाषण कराना। ऐसे बाबा को बता दिया, चलो तैयार हो गए जी। अभी तैयारी भी करे तो क्या करे, टॉपिक ऐसा किसी को बताए नहीं गए थे, कहा कि ज्ञान योग के टॉपिक होंगे, चिटकी बनाकर रख दी जाएंगी, उसी समय आओ चिटकी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो, ऐसा वो प्रोग्राम था। अभी तैयारी भी करे तो क्या करे, टॉपिक कहीं मालूम नहीं है। तो एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, सब लोग देखने सुनने के लिए आए। रात के 8:30 बजे ओम शांति भवन का हाल फुल भर गया है, सब दादे दादियां आगे बैठे हैं, जिनको कुछ बोलना नहीं आता हो ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया है। 7 बहनें 7 भाई सब नए नए, उनमें ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया गया जिनको क्लास कराना भाषण करना नहीं आता था, क्योंकि उनको सिखाना है इसलिए, और उनमें से एक हम भी थे। तो आप सोच सकते हैं कैसा वो सीन होगा। तो प्रोग्राम शुरू हुआ और 3 लोगों ने हमारे से पहले बोला, चौथा नंबर हमारा आया, हम भी गए, चिट्ठी उठाई और खोल के देखा तो इतना वंडरफुल टॉपिक निकला, कभी सोच भी नहीं सकते थे। टॉपिक निकला कि यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अब एक तरफ तो पढ़ के हंसी आए, दूसरी तरफ विचार चले कि भाई इस पर हम क्या बोले, तो बिल्कुल ही अपने से बाहर का टॉपिक है। अच्छा सोचने का भी टाइम नहीं, माइक के आगे खड़े बोलना ही अपने को है। तो मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया, मैंने बाबा को याद कर कहा कि बाबा अभी देखो मेरे को तो कुछ नहीं आता है, अभी आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ। और ऐसा नहीं हो कि लोग हंसी उड़ाएं, पहली बार स्टेज पाए, भाषण अच्छा होना चाहिए, ये भी बाबा को याद करके बोल दिया। और जैसे ही ओम शांति कह के बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि बाबा ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो, पॉइंट स्मृति में आती गई, हम बोलते गए और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी, इतना अच्छा बोल गए कि उसमें फर्स्ट नंबर आया। तो आप सोच सकते हैं किसको 2 शब्द बोलना नहीं आता और इतना अच्छा भाषण कर जाए, फर्स्ट नंबर आ जाए, किसकी कमाल है, कौन कराने वाला है। तो उस दिन से एक निश्चय हो गया, भले हमारे को कुछ नहीं आता हो, यदि हम भगवान को साथी बना के चलें तो हमारे लिए हर असंभव कार्य संभव होता चला जाएगा। इसलिए बाबा की सेवा में कभी भी ना नहीं करनी है। तो जहां सर्वशक्तिवान भगवान हमारा साथी बनकर साथ दे रहा हो तो सब कुछ सहज और सरल होता चला जाएगा, तीव्र पुरुषार्थ बना रहेगा। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम अपने आप को व्यर्थ के विचारों से कंप्लीट मुक्त बनाएं, सदा समर्थ और शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बनकर चलें। इस संबंध में बाबा के महावाक्य हैं कि यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहां समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। तो जहां क्योंकि व्यर्थ के विचारों में बहुत सारा समय और शक्तियां वेस्ट चली जाती हैं, स्थिति साधारण हो जाती है। क्यों व्यर्थ के विचार चलते हैं, जब हम अपने आप को खाली फ्री छोड़ देते हैं, मन को कोई काम नहीं देते। तो मन का काम है संकल्प करना, चिंतन करना। अगर आप ज्ञान योग के विचार नहीं देंगे तो जो देखेंगे जो सुनेंगे उसका ही चिंतन चलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा कोई न कोई स्वमान का अभ्यास, ज्ञान के पॉइंट का मनन चिंतन, चेकिंग करना, चार्ट रखना, अटेंशन देना, स्टडी करके चलना, इन सब बातों में अपने आप को हम बिजी रख के चलें तो उससे हमारे विचार महान बने रहेंगे और व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं मिलेगी। और जहां व्यर्थ के विचार से हम मुक्त होते जाते हैं, हमारे विचार समर्थ शक्तिशाली बनते चले जाते हैं, तो वहां एक कैसे असंभवी कार्य संभव होता चला जाता है। एक मेरा स्वयं का ही अनुभव भी लेटेस्ट का ही, पिछले महीने हम आसाम गए थे भट्ठी कराने के लिए। तो वहां शिव सागर एक जगह है, वहां पर भट्ठी चल रही थी। तो भट्ठी तो पूरी हुई, इसके बाद ग्राम विकास का प्रोग्राम शुरू हो रहा चल रहा था। तो हम भी स्टेज पर बैठे हुए थे, तो उसी बीच में मुझे उठ के गया मैं बाथरूम जाने के लिए, और जब वापस आने लगा तो कुंडी जब बंद करने लगा तो कुंडी के बीच में उंगली आ गई और कट गई, खून निकलने लगा। स्टेज पर बैठे हैं प्रोग्राम में और ये घटना हो गई। चलो मैंने कहा ये भी कोई कर्म का हिसाब किताब होगा जो थोड़े में चुकता हुआ। मेरा कोई संकल्प नहीं चला नेगेटिव। मैं स्टेज पर जाके बैठ गया और ऐसे उंगली के ऊपर अंगूठा रख लिया और दृष्टि देते ये संकल्प किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर इसे उंगली के ऊपर डाल रहा हूं और इससे इसका खून निकलना बंद हो जाए, दर्द बंद हो जाए। ऐसे दृष्टि देते 15 बार संकल्प किया और उसके बाद अंगूठा हटा लिया और खून निकलना बंद, दर्द भी काफी कम हो गया और 15-20 मिनट के अंदर तो सब कुछ नॉर्मल जैसे हो गया। इतनी बड़ी शक्ति है स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशंस के अंदर, जिसके द्वारा क्योंकि हम जो भी संकल्प कर रहे हैं वैसे हमारे शरीर में सेल्स का निर्माण होता जाता है, हमारे हर संकल्प में वैसा बनने करने की शक्ति है। इसलिए हम अपनी संकल्प शक्ति की वैल्यू को जाने पहचाने और उसको नेगेटिव व्यर्थ जाने से बचाएं, समर्थ शक्तिशाली बनाकर चलें तो वहां असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे। और एक अनुभव, एक भाई कोई मेडिकल का बड़ा एग्जाम देने जा रहा था तो उसके मन में भी थोड़ा सा हलचल थी, व्यर्थ के विचारों की, पता नहीं एग्जाम में मेरे से क्या प्रश्न पूछे जाएगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। तो उसका फोन आया, भाई साहब मेरे मन में थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल है और आप मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे क्या करना चाहिए। तो हमने उसको कहा कि आप जब इंटरव्यू ये पेपर देने जाएं तो इस निश्चय के साथ पेपर देने जाना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। दूसरा, जब पेपर शुरू करें तो वहां एक मिनट जितना टाइम हो, एक मिनट दो मिनट के लिए बाबा को याद कर कहना बाबा अभी आ जाओ मेरे से पेपर करवाओ। और तीसरा, इस निश्चय के साथ पेपर देने जाना कि मैंने जो पढ़ा है याद किया वैसे ही प्रश्न मेरे से पेपर में पूछे जाएंगे। वो गया पेपर देने के लिए और उसने ऐसा ही किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है और मैंने जो पढ़ा याद किया वैसे ही प्रश्न मेरे से पेपर में पूछे जाएंगे। और मैंने जो मैं अपना तीसरी बात बताई कि जो तीसरी बात बताई क्या, हाँ बाबा मेरे साथ, बाबा का आह्वान कर लेना ये बताया। तो उसने ऐसा ही किया, बाबा अभी आ जाओ मेरे से पेपर करवाओ। और सचमुच उसने जैसा संकल्प किया वैसे ही उसके सामने प्रश्न आए और बाबा का वो आह्वान करके, बाबा अभी आ जाओ ये प्रश्न का क्या है उत्तर। और सचमुच बाबा को याद करते उसके बुद्धि में वो टचिंग मिलती थी कि ये इसका उत्तर है। ये विचार आते गए, जैसे जैसे वो बाबा से टचिंग उसको मिलती गई उस प्रश्न का वैसे वैसे उत्तर लिखता गया और उसका पेपर इतना अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा, और रिजल्ट आया तो वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। तो आप सोचिए हमारे मन के समर्थ विचार, शक्तिशाली विचारों में वो शक्ति है वैसा बनने करने की। इसलिए व्यर्थ के विचारों से अपने आप को कंप्लीट मुक्त बनाकर चलें। बाबा ने तो हमको वरदान ही दे दिए हैं वो, इसलिए व्यर्थ को आने कोई मार्जिन ही नहीं होनी चाहिए। बच्चे तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन हो, सफलता तुम्हारा सदैव साथ निभा रही है, तुम विजय तुम्हारी हुई पड़ी है, तुम कल्प कल्प के माया जीत आत्मा हो और मैं सदैव तुम्हारा साथी बनकर साथ दे रहा हूं। तो फिर वहां हलचल की बात ही खत्म हो जानी चाहिए है। तो सदैव यदि हम उसे साथी बनाकर चलेंगे, समर्थ के विचारों का स्वरूप बन के चलेंगे तो फिर आप जो सोचेंगे वैसा ही होता रहेगा और आपका पुरुषार्थ तीव्र गति का बना रहेगा। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम अपने मन की भावनाओं को शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाएं, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़ें, बाप समान बने, निरंतर योगी बन जाएं, सबके जीवन से विघ्न और दुख की घटनाएं खत्म हो जाएं। जहां ऐसे कल भी सब भावनाओं की बातें सुन रहे थे ना क्लास में हैं, तो बहुत बड़ी शक्ति है हमारे मन की शुभ भावनाओं के अंदर। लेकिन ये तो हुआ ज्ञान, लेकिन एक व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार करता है, दुख देता है, विघ्न डालता है, क्या ऐसी आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना रहती है या बदल जाती है? कुछ एक कहते हैं रहती हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं बदल जाती हैं। और देखो ये नियम है, यदि हमारे मन की भावनाएं बदल गई, नेगेटिव हो गई गलत व्यवहार को देखकर मान लो, तो उस आत्मा के पास भी नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचेंगे और वो भी हमारे प्रति नेगेटिव भावना रख के चलेगी, तो उसकी नेगेटिव भावना हमारी स्थिति को भारी बना देंगे, पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हम अपने मन में यदि सदा ही सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख के चलते हैं, तो उस आधार से कैसे भी नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, आप में से कई ऐसे भाई होंगे जिनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती, विघ्न डालती हैं, कई ऐसी माताएं होंगी जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते, वो रुकावट डालते हैं, तो कैसे आप ऐसी आत्माओं के मन के विचारों को शुभ भावनाओं के प्रयोग से बदल सकते हैं, ये प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई थे, उनका बड़ा बिजनेस था, उनकी युगल ज्ञान में चलती थी, वो ज्ञान में नहीं चलते थे, सॉरी वो भाई ज्ञान में चलते थे, उनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती थी, और बहुत विघ्न डालती थी कि मेरे बिना पूछे बिल्कुल भी सेंटर पर नहीं जाना, इतना बड़ा विघ्न डालती थी। तो भाई मधुबन आए बाबा से मिलने के लिए, एक रात पांडव भवन में रुकने के लिए आए, क्लास के बाद हमारे से मिले, उन्होंने ये प्रश्न किया कि भाई साहब मेरी युगल बहुत विघ्न डालती है, मेरे को ज्ञान में चलने से रोकती है, मैं क्या करूं। तो हमने उन्हें बताया कि आप एक प्रयोग करो, यदि आप अपनी युगल को परिवर्तन करना चाहते हो, सहयोगी बनाना चाहते हो, तो दो बातों का आश्रय होना बहुत जरूरी है, उनकी पालना करके चलना। पहली बात, आपका चाहे वो कितना भी विरोध करे, लेकिन एक तो अपने मन में कंप्लीट उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख के चलनी है, जरा भी नेगेटिव भावना ना हो। दूसरा कि ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। क्यों करना है, क्या करना है अमृत वेले, वो मैं बतला रहा हूं। अमृत वेले हम सभी का अंतर मन शांत और खाली होता है, तो उन विचारों को सहज ही स्वीकार कर लेगा और फिर वैसा बनना करना हमारे लिए सहज और सरल हो जाएगा। इसलिए प्रयोग अमृत वेले ही करना है। प्रयोग क्या करना है, जिस आत्मा को हम परिवर्तन करना चाहते हैं, सहयोगी बनाना चाहते हैं, तो अमृत वेले उस आत्मा को अपने सामने सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर लो, और इमर्ज कर उससे इस प्रकार से शुभ भावनाओं के रूप में बातें करो कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देव कुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। इस तरह से इनका 7 दिन अमृत वेले योग में अपनी युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में मर्ज कर उससे बातें करना शुभ भावनाओं के रूप में, और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। वो यहां से गए, मधुबन से जाने के बाद अमृत वेले उठ के और अपने सूक्ष्म में अपने युगल को लाइट के रूप में मर्ज कर उससे इसी प्रकार से बातें की, तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। ऐसे उसने 2 दिन प्रयोग किया। 3रे दिन उनके सेंटर पर योग की भट्ठी थी, तो उसने सोचा योग की भट्ठी है तो योग की भट्ठी में तो जाना है, तो मैंने 2 दिन तो प्रयोग किया ही, तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा, तो युगल से पूछ के देख लेता हूं, जैसा जवाब मिलेगा उससे पता चल जाएगा शुभ भावनाओं के प्रयोग का कुछ असर हुआ या नहीं। तो गया युगल के पास और कहा कि देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्ठी है और यदि आपको हो तो मैं जाऊं। हाँ हाँ भले जाओ। जो रोजाना इतना विरोध करती थी वो ऐसे छुट्टी दे दी जैसे कि पहले से ही तैयार बैठी है। कैसे आ गया इतना बड़ा परिवर्तन, उसके मन की शुभ भावनाओं ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया। इसलिए आप में से जिनके सामने भी कोई ऐसी समस्या हो तो आप भी ये प्रयोग करके देख सकते हैं। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम अपने सभी बोझ भगवान को अर्पित कर दें। कहीं भी कोई समस्या आए तो हलचल होती है ना, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें, लेकिन बाबा ने खुद कहा बच्चे कोई विघ्न परिस्थिति आए तो तुम दिल से याद कर मुझे कहेंगे प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ मदद करो, तो भगवान तुरंत तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। जब इतनी बड़ी ऑफर बाबा हमें दे रहा है तो क्यों फिर हमने उसका फायदा उठाएं। तो कहीं भी कोई है, लेकिन क्या होता है अनेक जन्मों से आत्माओं को वजन उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तेरे मेरे का, इधर उधर की, पुराने स्वभाव संस्कारों का, पाप कर्म विकर्म का, विनाश का बोझ, जो बहुत बोझ आत्मा के ऊपर है उससे भारी बन गया आत्मा, इसलिए बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती है और अनेक संकल्प विकल्प चलते हैं। तो इसलिए हम ये प्रैक्टिकल में प्रयोग करें, कहीं भी कोई बात आए बाबा ये बात ऐसे ऐसे आप देख लेना, तो देखो वहां बड़ी से बड़ी समस्या कैसे एक हल हो जाती है, सहज और सरल हो जाती है। एक छोटा सा अनुभव, मोस्टली हर बात के पीछे अनुभव सुना रहा हूं, देखो ज्ञान की बातें तो आप रोजाना सुनते हैं, लेकिन जब किसी के सामने समस्या परिस्थिति आती है तो वहां कईयों के पुरुषार्थ की गाड़ी खड़ी हो जाती है, प्रश्न उठता है क्या करें कैसे करें, क्यों सब कुछ होते हुए कुछ काम नहीं आ रहा, क्योंकि अनुभव नहीं है। ज्ञान तो सुन रहे हैं, योग भी करते हैं, लेकिन उसके अनुभवी मूर्त नहीं बने। तो अब समय आया है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ज्ञान और योग का प्रयोग कर अनुभवी मूर्त बनने का, विजयी बनने का। तो एक भाई थे, वो नहीं मेरा ही अनुभव स्वयं का, मैं हम भुवनेश्वर गए थे उड़ीसा भट्ठी कराने के लिए, तो वहां दो दिन की भट्ठी थी, तीसरे दिन बहन जी एक दिन में क्लास कराने के लिए गाड़ी में बैठा के लेके जा रही थी, दो टीचर बहने थी, एक माता थी, एक भाई गाड़ी चलाने वाला, और एक हम पांच लोग उस गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। छोटा रास्ता था, सिंगल रोड जा रहे थे, तो रास्ते में एक गांव पड़ा, जैसे ही गांव क्रॉस करने लगे दूसरी साइड से एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति आया, गाड़ी से टकरा गया। मैंने कहा बाबा इसको बचाना नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, तो उसको तो कुछ नहीं हुआ लेकिन उसकी मोटरसाइकिल को थोड़ा नुकसान हुआ। तो फटाफट बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, 15-20 लोग इकट्ठे हो गए, हमारी गाड़ी की चाबी ले ली, हंगामा करने लगे, ये है वो है, पैसे देकर जाओ। अब गलती किसी की भी हो लेकिन बड़ी गाड़ी वाले की मानी जाती है, वो 15-20 लोग थे, हम पांच लोग ही थे। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम अपनी गलती मानते हैं, तो आप दुकान पे चलिए, आपकी मोटरसाइकिल ठीक करा देते हैं। नहीं नहीं, बोल हमको तो पैसे ही चाहिए और पैसे बहुत मांग रहे। अब ऐसे समझाते करते उनको आधा घंटा बीत गया, फिर भी उस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। तो मैंने देखा कि बात कुछ बन नहीं रही है, तो मैं वहां से थोड़ा सा अलग होकर और मैंने बाबा का आह्वान किया, बाबा को दिल से याद कर सारी समस्या बताई, और मैंने बाबा को कहा बाबा अभी देखो आपके बच्चों की सेवा में जा रहे हैं और ये लोग यहां इतना हंगामा कर रहे हैं, कोई बात मान नहीं रहे, तो अब इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है वो आप जानते हो, तो आप आओ और इस समस्या का समाधान कराओ। ऐसे मैंने बाबा को दिल से याद कर कहा, बस भगवान जी के लिए तो एक सेकंड की बात है। तो उसी समय जो माता हमारे साथ थी, बाबा तो किसी के थ्रू ही कराएगा ना है, तो जो माता हमारे साथ थी उसको टचिंग मिली, उसके अंदर फोर्स आया और वो सबके आगे आके बोलने लगी कि ये मेरी गाड़ी है, मैं आप लोगों को एक पैसा भी नहीं दूंगी, और जिसको चलना है पुलिस थाने चलो, जो पुलिस फैसला करेगी वो होगा। ऐसा कहकर वो सबके सामने जोर से बोला, और देखो ये व्यक्ति के मुंह से बदबू आ रही है, जिसने गाड़ी चला रहा था वो मोटरसाइकिल वाला, कि इसके मुंह से बदबू आ रही है, शराब पियो इसलिए हम एक पैसा भी नहीं देंगे। शराब पी के गाड़ी चलाना तो कानूनी अपराध है, अगर वो पुलिस में गए तो उनको अंदर करेगी पुलिस पहले से। ये सुनकर वो ठंडे पड़े और पांच मिनट के अंदर तो हमको कहने लगे भाई साहब हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जाओ। जो आधा घंटे से जिस समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, पांच मिनट के अंदर बिना कुछ लिए दिए हम वहां से चल पड़े। ये है उस ऑलमाइटी बाबा की कमाल। लास्ट पॉइंट, तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ कर चलें, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ कर चलें। जो समय मेरे पास है वही मेरे लिए अंतिम घड़ी है। ऐसा समझने से क्या होगा, अगर किसी को बता दिया जाए कि मान लो आपकी यही अंतिम घड़ी है, या कुछ समय बाद की, मान लो आधा घंटे के बाद आपका अंतिम समय होगा, तो क्या करेगा व्यक्ति? सोचो आप ही अपने आप से कुछ ये सीन सामने लाकर क्या करेगा फिर? बाबा को तो याद करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ बाबा की याद भी उस समय सहज तो नहीं आएगी ना, और कुछ बातें और भी करनी है, सबसे बुद्धियोग निकाल लेगा, जिनसे भी कुछ हिसाब किताब है वो सबका चुकतू कर देगा, और जिससे भी कुछ मान लो पाप कर्म किया, विकर्म हुआ हो, जो भाई जी ने अभी बताया, सबसे माफी मांग लेगा है। तो इस तरह से हर घड़ी को हम अंतिम घड़ी समझ के चलेंगे, तो बुद्धियोग सबसे निकल कर एक अलर्टनेस आ जाएगी, अपने आप पर आ जाएगा बुद्धियोग, बाप पर आ जाएगा बुद्धियोग। तो अंतिम समय के लिए व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरे जीवन का अंत एक बाबा की याद में हो। अंत में किन को बाबा की याद आएगी? जिसने बहुत काल का याद में रहने का अभ्यास किया हुआ होगा उसको ही अंत में बाबा की याद आएगी। इसलिए बाबा कहता है ना, बहुत काल का अभ्यास ही अंत में काम आएगा, नहीं तो कई सोचते हैं ना अंत में बाबा याद आ जाएगा बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत काल का अभ्यास ही अंत में काम आएगा, इसलिए हम अभ्यास में लग जाएं, याद में रहने का अभ्यास। और तो इसके ऊपर हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ के चलेंगे तो सब सर्वस्व बुद्धि योग डिटैच होकर न्यारे रहकर अलर्टनेस रहेगी और एक बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे। तो इस पर भी एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक गृहस्थी व्यक्ति था, वो घर गृहस्थ की समस्याओं से बहुत तंग आ चुका था और परेशान होकर वो एक सन्यासी के पास गया और कहने लगा, महाराज मैं घर गृहस्थ की समस्याओं से बहुत तंग आ चुका हूं, मैं इन सब से मुक्त होना चाहता हूं, कोई विधि बताओ। तो उसने कहा, अच्छा बोल, वो अपना हाथ दिखाओ। हाथ देख के सन्यासी कहता, अरे भाई आपके साथ तो बड़ी खराब घटना होने वाली है। बोल क्या होने वाला है महाराज? नहीं नहीं बोल बताने जैसा नहीं है। नहीं नहीं जरूर बताओ। थोड़ी देर के बाद फिर सन्यासी कहता, आपके साथ तो बड़ा अपशगुन होने वाला है। बोल क्या होने वाला है महाराज? नहीं नहीं बोल बताने जैसा नहीं है। जितना वो ना करे और ही उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ती जाए पूछने के लिए। नहीं नहीं जरूर बताओ। जब वो बहुत पूछने के लिए लालायित आतुर हो गया तब वो सन्यासी कहता है, देखो आपके हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि आज से 21 दिन बाद दिन के 1 बजे आप शरीर छोड़ देंगे, ये फाइनल बात है, यह होना ही है। ऐसा कह के उसकी बुद्धि में वो बात फिट बिठा दी। अब उसकी बुद्धि चलने लगी कि आज से 21 दिन बाद मैं शरीर छोड़ दूंगा तो मुझे क्या करना है। अपने नाम जो भी मकान दुकान जमीन जायदाद थे सब बच्चों के नाम कर दिए, जिससे भी कुछ हिसाब किताब लेना देना बकाया था सबका चुकतू कर दिया और मित्र संबंधियों को मैसेज भेज दिया, सबको मिलना हो तो आ जाना फलानी डेट को दिन में 1 बजे मैं शरीर छोड़ने वाला हूं। तो धीरे धीरे करके वो समय भी आने लगा। जब 2-3 दिन बाकी रहे तो मित्र संबंधी सब आने लगे, वो दिन भी आ गया। जब 2-3 घंटे बाकी रहे तो सबने सोचा, भाई भगवान के पास जाने का समय इसका नजदीक आ रहा है तो सब भगवान को याद करो। उसको बीच में बिठा लिया और सब बड़ी लगन से भगवान को याद करें। याद करते करते जब 1 बज गया तो भगवान को छोड़ के उसकी तरफ देखने लगते, हाँ देखते अभी कैसे शरीर छोड़ता है। 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गए, कुछ नहीं हुआ। तो सब बड़े गुस्सा करने लगे, सन्यासी ने क्यों झूठ बोला है, क्यों धोखा दिया है, चलो हम चल के बताते हैं उसे। तो वो सब जोर जोर से उल्टा सीधा बोलते सन्यासी के पास पहुंचे कि आपने क्यों धोखा दिया, क्यों झूठ बोला है। तो सन्यासी कहता, आप सब शांत हो जाओ तो मैं बताऊंगा। तो सब शांत हो गए। तो सन्यासी कहता, देखो ये व्यक्ति मेरे पास आया और इसने मुझे कहा कि मैं घर गृहस्थ की समस्याओं से बहुत तंग आ चुका हूं, मैं इन सबसे मुक्त होना चाहता हूं, कोई विधि बताओ। तो मैंने विधि बताई, अब आप इससे पूछ लीजिए कि सबसे मुक्त हुआ है या नहीं। बोलो भाई सबसे मुक्त हुआ है? बोल हाँ महाराज मैं सबसे मुक्त हो गया हूं और भगवान के पास जाने के लिए तैयार हूं। तो कब तैयार हुआ वो? जब उसके लिए अंत का समय, अंत की घड़ी फिक्स कर दी गई कि आपके लिए दिन में 1 बजे का समय अंतिम घड़ी है, तो उसकी बुद्धि सब तरफ से हटती चली गई। तो बाबा ने हमको ये समय तो नहीं बताया लेकिन इतना जरूर बता दिया कि बच्चे कोई भी घड़ी किसी के लिए अंतिम घड़ी हो सकती है, इसलिए सदैव एवर रेडी रहो, तैयार रहो। बस अंत में मैं 2 मिनट और लूंगा, एक स्लोगन सुना के पूरा करता हूं कि एक स्लोगन बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा आप लोगों ने, बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। बस एक जिम्मेवारी हम अपनी निभाएं, बाबा को याद करें, बाकी सब काम बाबा करता है, मेरा ये अनुभव है। क्या होगा कैसे होगा करें ना करें ये सोचने के बजाय बस हम एक जिम्मेवारी निभाएं, उसे याद करें, वो हमारे लिए सब कुछ करता है। एक अनुभव, एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए, 2 दिन की भट्ठी थी और उन्हीं के कनेक्शन में एक एक दिन की 3 जगह और भट्ठी थी। तो एक ही दिन की भट्ठी होने के कारण दिन में भोजन के बाद फिर से तुरंत क्लास शुरू हो जाते थे। 3 दिन से हमको दिन में रेस्ट नहीं मिल रहा था, काम चल रहा था लेकिन रेस्ट की कमी हो रही थी। 4th दिन मॉर्निंग क्लास कराने के लिए वहां की बहनजी ने एक 4th सेंटर पर भेज दिया। जब 4th सेंटर पर पहुंचे तो वहां की बहनजी ने जाते ही प्रोग्राम दे दिया कि भाई जी ये क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पर क्लास कराने जाना है। अब मेरे को तो वही क्लास कराना थोड़ा सा भारी लग रहा था क्योंकि 3 दिन से दिन में रेस्ट नहीं मिला था। तो मैंने बहन जी को कुछ नहीं बोला, उनकी बात सुन ली और बाबा को याद करके कहने लगा, बाबा अभी देखो ये शरीर रूपी गाड़ी तो रेस्ट मांग रही है और बहन जी ने प्रोग्राम दिया है क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाना है। अब कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है, सेवा कराने वाले तो आप हो। ऐसे मैंने बाबा को दिल से याद कर बता दिया। बस वहां भी भगवान जी के लिए तो 1 सेकंड की बात है। तो क्लास पूरा किया, नाश्ता किया और बाबा ने बहन जी की बुद्धि को टच किया और बहन जी आकर कहती है, अच्छा भाई जी मेरे को ऐसा विचार आया, कभी आप थोड़ा रेस्ट कर लो उसके बाद जाना क्लास कराने। वाह बाबा, इसका मतलब हमारे मन का एक एक संकल्प उसके पास पहुंच रहा है, तभी तो उसका रिटर्न मिल रहा है ना। तो सदैव याद रहे कि भगवान मुझे देख रहा है, देख तो रहा ही है, हैं? अगर ये स्मृति सदैव विमर्ज रूप में रहेगी तो अलर्टनेस रहेगी, सब तरफ से बुद्धि योग हटा रहेगा और पुरुषार्थ हमारा तीव्र गति का होता रहेगा। और इस तरह से तीव्र पुरुषार्थ करके हम समय पर मंजिल पर पहुंच सकेंगे, तो इस तरह से और बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो यही हमारी आप सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति।
Bye.